others being any response to your divinity. Look deep and deep in the midst of our infinity. موضوع اعتبار سے اتنا رہا ہے یعنی موضوع طویل ہے پھر بات شروع کریں گے تو لمبی بات ہے اس لیے آج رات و رات شروع کر لیں بات چیت کر لیں کسی پوچھنی ہو فلم کر لیں تاکہ آپ کا آنا بیکار نہ جائے مگر موضوع اب اتنا ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں پورا نہیں آپ فرمائیے جی سوال بھی باپ کو کرائیں آج آپ کی بات
بتا سکتی ہے وہ مشینوں کے ذریعے چیک کرتے
और अल्ट्रासाउंड के जरिए बता दे क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए इज्जत को तब्दील कर देना चाहिए। ये बहस इससे मोहम्मद खान साहब शिरानी जो उनके राजी काउंसिल के मेंबर हैं तशरीफ लाए और ये बात उन्होंने कही कि भाई आप लोग बताएं इज्जत तब्दील हो सकती है नहीं सकती, क्या करना चाहिए। उनकी अपनी राय उनकी उनसे दरखास्त की क्या बताए, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात करवाई। उन्होंने कहा कि मनसूस चीजें कैसे तब्दील हो, इज्जत तब्दील हो जाने का मतलब ये हुआ कि एक औरत के शौहर का इंतकाल हुआ सुबह और यही डॉक्टर ने कह दिया कि बिल्कुल साफ है, तो शाम को उसका निकाह हो जाएगा। ये कहते मुझे एक महीने बाद निकाह हो जाएगा, औरत ने कुछ शौहर को जहर दे दिया, ये सारी चीजें हो सकती है, शौहर से जान छुड़ा ली, तो क्या एक आध हफ्ते के बाद निकाह हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए कि हम इज्जत को खत्म अगर करना चाहें तो उसकी बुनियाद वो हिकमत बता रहे हैं जो हिकमत हम लोगों ने सोची। और अल्लाह के यहाँ जितने भी बड़े से बड़े दिमाग का भी आदमी हो ना, और जो भी हिकमत वो लिखते ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह ने वो हुक्म उसकी हिकमत की वजह से दिया और अल्लाह के यहाँ 10 बातें और भी हो सकती। तो इसलिए जो चीज होती है मनसूस नस से साबित नस से कतई यानी किताब और सुन्नत से सिर्फ तब्दील कर नहीं सकता। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो फुकहा के इज्तिहाद पर मुश्तमिल होती। अब इज्तिहाद में तफसील है, कभी कोई इज्तिहाद साहिब मजहब करता है जैसे इमाम मालिक इमाम शाफी अहमद अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इन हजरात का इज्तिहाद बहुत बड़ी चीज। वजह उसकी ये है कि अब हम कहते हैं हदीस भी आया है, अब हम कहते हैं इस्लाम रिवायत भी आया है, तो जो अहादीस जिसको अब हम कहते हैं ना कि ये हदीस ज़ईफ है कि ये हदीस कमजोर है, उस वक्त मतलब इमाम बुखारी पर रहमतुल्लाह का कि ये हदीस में आया है, इमाम बुखारी पर रहमतुल्लाह अलैहि के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दो तीन बात थे, उनके लिए तो ज़ईफ नहीं थी। ये तो बात भी किसी किताब वाले ने लिखी, मतलब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के इमाम निसाई ने लिखी, तो निसाई में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बात, तो 9 बातों में 2 वास्ते जो इमाम निसाई के उस्ताद हैं उनके उस्ताद हैं, चलो ये खराब हो गए ज़ईफ हो गए। उससे पहले तो लोग थी उस जमाने में जिस मुहद्दिस ने उस हदीस का फतवा दिया था उसका क्या करें। तो इस तरह साहिब के मजहब जब वो इज्तिहाद करता है तो उसका इज्तिहाद बहुत वजन रखता है। फिर पिछले दर्जे में उसके बाद चीजें ऐसी आ जाती हैं जो उस वक्त के मुख्तलिफ अजूम पर मुश्तमिल होती है, उसका ताल्लुक किताब सुन्नत से हकीकत नहीं होगा, उसका ताल्लुक होता है चीज से, उसका ताल्लुक होता है जुग्राफिए से, उसका ताल्लुक बन जाता है तारीख से, कौन सी चीज है। तो अब जब ये तहकीकात बदलने की जरूरत हुआ बदल जाए, मसलन आपने जो कान का जिक्र किया है कि कान में दबा डालने से रोजा टूट जाता है, अब देखना यह है कि दलील क्या है। अगर दलील ये दें कि कान में डालने से रोजा जो टूटा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया बात खत्म हो तो हुक्म दे दिए, दूसरी तरफ जो फुकहा हैं अब भी मुफ्ती हजरात जो कहते हैं कि रोजा नहीं टूटता, वो कहते हैं कि हदीस से साबित ही नहीं बल्कि इस फतवे की बुनियाद ठीक था। और उस जमाने में हकीम ये कहते थे कि अगर कान में कोई दवाई डालेगा तो वो हलक में चली जाएगी, अब जदीद मेडिकल साहब ने साबित कर दिया कि उसके कोई रास्ता उसका है ही नहीं, तो अब फतवे की बुनियाद बदल गई। अगर फतवे की असल वो हदीस नहीं है तो फिर इस फतवे को बदल देना चाहिए। इसी तरह अब और बहुत चीजें मेडिकल में मिल जाएंगी कि उसकी बुनियाद क्या रखी है मतलब शराब जाओ के सामने जब ये मसला आया कि शराब हराम है इमाम साहब रहमतुल्लाह फरमाया कि असल में के जमाने में जिस चीज के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जो चीज हमने हराम किया वो खमर है और शराब के बीच क्यों नाम है अजीम अल्लाह ने उन सारे नामों में से चुनकर यही खमर क्यों कहा तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा यह खमर बनती किस किस चीज से है पता चला इन चार चीजों से खमर बनती है अंगूर की शराब से उसका इतलाक होता था और मुनक्के की शराब को उसका इतलाक होता तो ये जो चार किस्म की शराबें थी इमाम साहब रहमतुल्लाह का बुनियादी तौर पर ये रहा इसका हुक्म और इसके अलावा जिन चीजों से शराब बनेगी उसका हुक्म दोनों का मुख्तलिफ हो जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर ये कहा होता कि ये शराब हराम है हर न शराब और चीज हराम है तो फिर फर्क हो जाता फिर हम ये ना कहते حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشے والی چیز حرام ہے تو نشے والی جو چیز حرام ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام اب یہ جو چار شرابیں رہ گئیں ان کے علاوہ کس چیز سے شراب بنائی جائے تو کیا اس کا پینا جائز ہے وہ بھی حرام ہے لیکن ان چار شرابوں کے علاوہ جو شراب ہے کسی بھی چیز سے بنائی گئی جیسے اسپرٹ بناتے ہیں مصنوعی طریقے سے اب اس کا وہ کہتے ہیں کہ اگر خارجی استعمال ہو تو یہ درست مثلا ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ اسپرٹ سے اس زخم کو دھو دیا جائے تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا کسی اور قسم کی شراب سے کہتا ہے اسے دھو دیں تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اب ہم کہا کہتے ہیں یہ درست یہ ٹھیک کیونکہ تحقیق انہوں نے کی تو انہوں نے کہا خمر کا اطلاق جس چیز پہ ہو رہا تھا اسے حرام کہیں گے پینے کے لیے تو ساری ہی حرام لیکن اس کا استعمال کسی بھی درجے میں جائز نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو ہے اس کا استعمال کسی درجے میں دوائی کے طور پہ جائز ہو سکتا ہے اسی لیے یہ اتنا بھی ہے نا ہمیں پیسے کا علاج اسے درست قرار دیا گیا اور اسی لیے مفتی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے جب یہ بات آئی تھی کہ انگریزوں کے ہاتھ سے دوائیاں لبانے لیکن قدر شریف میں نہیں رہی کہ میڈیکل شروع ہوا تو اس وقت یعنی کے نام سے پوچھا گیا کہ حضرت اب اس میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی پرسنٹیج الکوہل کی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا درست یہ جائز دوائیوں کا استعمال پھر اس کی بقائے اللہ تعالیٰ نے بقائے تو مفتی میں دیکھیے گا لوگوں نے کہا کہ صابن ایسا آتا ہے جس میں سور کی چربی ہوتی ہے لپسٹک ایسی آتی ہے جس میں ہوتی ہے تو اس کے جواب کو جب اس کی جائے اور وجوہ کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ چیز اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ آپ اسے ریورس پروسیس میں لے کے جائیں تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اس چیز کو لیا جا سکے اس چیز کو نکالا جا سکے کیونکہ حالت جب تبدیل ہو جاتی ہے تو چیز کا حکم بدل جاتا ہے گوبر خراب ہے لیکن گوبر جب خشک ہو کے اتلا بن جاتا ہے تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے ابھی عورت گاؤں میں انڈیا برکار کیا اتلا کے دیا سالن میں تو اسے نکال کے پھینک دے اور سالن کھایا جا سکتا ہے تو جب معلومات بدل جائیں اور بنیاد اس وقت کی نفس سے ثابت نہ ہو تو پھر حکم بدل جائے
میں
तो वो जो आदि हो चुके थे भूतों को देखने के और उसकी भूतों की इबादत के, वो कहते हैं जी वो गरीब चीज की दावत देते हो। इसकी अंबिया अलैहिस्सलाम बड़ी हिम्मत के साथ करते हैं और उसको क्या करते हैं, अल्लाह की तरफ से सिखाया जाता है यूं कहो कि अल्लाह ताला का हाथ इनके हाथों के ऊपर है, अल्लाह ताला का चेहरा। तो अल्फाज जो है, ये अल्फाज जुबान की कली है। अब अल्लाह ताला अपनी जात को बयान करने के लिए वो अल्फाज वो जुबान इस्तेमाल करे जो अल्लाह के अपने बयान निशान है, तो मखलूक के लिए समझ ही ना आए। तो फिर नतीजा ये निकले कि लोग ईमान ना लाने में मासूर ठहराए जाए और लोगों को फिर फिर पकड़ ना। तो अल्लाह ताला भी जानता है कि वो वही अल्फाज नाजिल फरमाता है जो उसकी मखलूक को समझ में आए। अब इन अल्फाज के बाद अल्लाह ताला की सिफात की तीन किस्में हो जाती है। अल्लाह की सिफात में से जाती सिफात आप जानते हैं, इल्म हयात इरादा कुदरत तमाम सर कलाम तकवीन, ये आठ सिफात हैं। तकवीन को अशायरा नहीं मानते, मादरीदी हजरात मानते और मादरीदी कहते हैं जाती सिफात में से इन आठ पर ईमान लाना जरूरी। तावीन इन सिफात की दूसरी सिफात है अल्लाह ताला की वो जो जात से ताल्लुक रखते हैं, दूसरी किस्म वो आ गई। वो तमाम सिफात जिनमें अल्लाह ताला ने खुद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार किया है अल्लाह के लिए उन आज़ाब का जो आज़ाब बज़ाहिर इंसानों में पाए जाते हैं। मसलन पिंडली तेरे पर दिगार का चेहरा या बिल्लाह फौकाई दी अल्लाह का हाथ था सहाबा के नाम के हाथों के ऊपर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपना पांव जहन्नम पे रखेगा, जहन्नम जब कहेगी कि और तो अल्लाह ताला अपना पांव रखेगा, सही बुखारी वगैरह में आया है। अब ये सिफात अल्लाह की ऐसी है जिनको असल मतलब जो मादरीदिया का भी था, सबका असल मतलब ये था कहते थे बस चुप रहो ज्ञान हो सजी गौजा ने जैसे बयान कर दिया हम वैसे ही मानते। कई सदियों तक हकीकत ने यही मतलब रहा। बस अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो अपने अर्श पर गालिब हुआ। अब अल्लाह का अर्श पर गालिब होना ये फलसफा आया तो फिर फलसफियाना मुबाइस चली इसलिए अल्लाह छोटा है कि अर्श छोटा है। अल्लाह ताला कोई ऐसा पत्थर बनाए जिससे वो खुद ना उठा सके।
کہ تاریخ کی بحث نقص بتاع روحانا بتاع روحانا ما يسمى اور جہاں تک اعمال کے تعلق ہے جو چیز فرض ہو اس سارا ماحول ہے لیکن یہ پرانا حال ہے جنم دن میں